प्रकाश है मौन से खुलता दिव्य आकाश है, मौन से मिटे हर प्यास है, मौन में ही प्रभु का वास है।
शांति। अचानक एक दिन एक स्त्री जापान के सड़कों पर प्रकट हुई। वो अत्यंत आकर्षक थी और वो कहां से आई, क्यों आई, ये किसी को भी पता नहीं था, परंतु पूरा शहर वहां उमड़ आया और विशेषतः उस शहर के युवक उससे शादी करने के लिए। तो ऐसे 300 लोग आ गए और सभी चाहते थे कि मैं इससे शादी करूं। वो कौन थी किसी को नहीं पता था। उस स्त्री ने कहा कि तुम हो 300, मैं तो एक हूं। यदि तुम में से कोई बुद्ध के लोटस सूत्र, कमल सूत्र जो है, उसको पूरा कंठस्थ करके आए, मैं उससे शादी करूंगी और तुम सब के पास 24 घंटे हैं। वो सब भागते हैं, किताब को ढूंढते हैं, द क्रक्स ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, लोटस सूत्र को ढूंढते हैं, रात भर पढ़ते हैं, याद करते हैं और फिर दूसरे दिन 10 लोग वहां आ जाते हैं और वो 10 के 10 वो होते हैं जिन्होंने वो लोटस सूत्र पूरा बाय हार्ट कर लिया है। वो स्त्री कहती है तुम हो 10, मैं हूं 1। मैं 10 से तो शादी नहीं करूंगी, 1 ही से करूंगी। अब इन 10 में से, तुम 10 में से जो इस लोटस सूत्र की व्याख्या कर सके उससे मैं शादी करूंगी और तुम सब के पास 24 घंटे हैं। वो सब भागते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं वो क्या है। और फिर तीसरे दिन 3 लोग आते हैं और उन्होंने उसे अच्छे से समझा है, अंडरस्टैंड किया है, पर प्रश्न अभी वही है। वो कहती है तुम हो तीन, मैं हूं एक, मैं शादी उससे करूंगी जिसने उसको जिया है, पिया है, जिसके जीवन में उस लोटस सूत्र की सुगंध है। और फिर चौथे दिन केवल एक ही व्यक्ति आता है और वो उसके साथ शादी करती है, और वो स्त्री उस युवक को अपने घर ले जाती है। घर शहर के बाहर है। कहानी को ध्यान से सुनना है। उस पुरुष ने ऐसा वो घर कभी देखा ही नहीं था। घर के बाहर उसके माँ बाप खड़े हैं उस स्त्री के, और वो अपने माँ बाप से उस व्यक्ति को मिलाती है और वो खुद घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो माँ बाप कहते हैं कि तुम अब अंदर जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी मिलने के लिए। वो युवक घर के भीतर जाता है पर घर के भीतर कोई भी नहीं है। वो सब तरफ देखता है पर वहाँ कोई भी नहीं है। एक दरवाज़ा खुल रहा है, वो उस दरवाजे के पास जाता है, वहाँ से पैरों के निशान है सैंडल के। वो सोचता है शायद वो यहाँ से गई होगी। वो उसका पीछा करता है उस निशान के, पैरों के। एक मील तक जाता है, कुछ कोई नहीं दिखाई देता। वहाँ नदी आती है, नदी के तट पर उसके वो सैंडल रखे हुए हैं। वो युवक पीछे मुड़कर देखता है, ना तो रास्ता है, ना तो बगीचा है, ना तो घर है, ना ही वो माँ बाप। वो सामने देखता है फिर, ना नदी है, ना वो सैंडल है, और उसे हंसी आती है। विवाह पूरा हुआ और कहानी भी, कहानी पूरी हो गई। क्या था ये? ये बौद्ध कथा है, अ ज़ेन स्टोरी। किसके साथ उसका विवाह हुआ और वो स्त्री कौन थी? उसे एक हास्य सुनाई देता है, एक यूनिवर्सल लाफ्टर, एक शून्यता, एक मौन। साधक के जीवन में वो स्त्री एक गुरु है जो आती है। पहला सूत्र कंठस्थ करना, दूसरा समझना, तीसरा उसका स्वरूप बन जाना। पर वहां तक ही वो रुकती नहीं है। वो उसे हाथ से पकड़ कर ले जाती है, सबसे मिलाती है, और फिर वहां छोड़ देती है कि उसके पीछे फिर कुछ भी नहीं है। कौन माँ बाप, कौन सा बगीचा, कौन सी नदी। और उस युवक का विवाह हो गया किससे? The emptiness, the silence, उस परम मौन से, जहां एक एक करके सब छूट गया, जिस जिसने बांधा था, जो जो बंधन था, वो सब एक एक करके चला गया। वही जो गोपिया और कृष्ण का गायन है, और क्राइस्ट और ब्राइड्स ऑफ क्राइस्ट का गायन है, जहां चेतना परम चेतना से मिल जाती है, जहां हमारा ही मिलन स्वयं से हो जाता है। उसका विवाह स्वयं से हो गया, स्वयं के भीतर जो मौन था, जो एम्प्टीनेस था, उस एम्प्टीनेस से। और वो मौन बाहर है ही नहीं, इसीलिए वो युवक हंसता है। उसको कहते हैं बेली लाफ्टर, यूनिवर्सल लाफ्टर। वो वहां पहुंचा, वहां अब कुछ नहीं रहा। जो था वो लगा जैसे एक इल्यूजन, एक भ्रम था। हम सोचते थे ये मेरा वो मेरा, ये मेरी वो मेरी, ये पद ये पोजीशन, ये पैसा ये सम्मान, ये व्यक्ति ये संबंध, सब कुछ। व्यक्ति वहां पहुंचता है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सब कुछ शून्य दिखाई देता है। वो मौन हमारे ही भीतर है और उसी मौन का अनुभव करने आप सब यहां आए। ये स्थान सबको कैसा लगा? यहां का निसर्ग, यहां का वायुमंडल, यहां की ऊर्जा, यहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, दिल्ली का AQI कितना होगा? 300, 350। मुंबई का कितना होगा? और आप जहां से आए हो वहां का भी एक बार देख लेना। और माउंट अबू का कितना है? 50-60 मीन्स। और यहां ज्ञान सरोवर तो और भी अधिक, एक्सट्रीमली प्योर एयर, हवाओं में प्राणिक ऊर्जा है, हवाओं में स्पंदन है, मौन है, एकांत है, एक अद्भुत सा आभा, एक ऊर्जा की तरंगे है चारों तरफ। कहीं पर भी बैठ जाओ, वो हर बैठना ही ध्यान होगा, मेडिटेशन होगा। तो यहां जब आए हैं तो यहां से कुछ लेकर जाना है, और जो लेकर जाना है वो शब्द नहीं अनुभव, आवाज नहीं मौन। शब्द भूल जाएंगे, जो भाषण सुने, जो लेक्चर सुने, जो क्लासेस अटेंड की, वो कोरे शब्द है, वो शायद सब कुछ खो जाएगा। पर जो एक सेकंड अनुभव किया, एक सेकंड केवल, कहीं पर बैठे हुए, हो सकता है घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, केवल बैठे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, और उसी अज्ञात क्षण में वो अनुभव होगा अचानक। वो आमंत्रण देकर नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूं, वो अपने आप होगा। हमारे बुलाने से नहीं होगा, हमारे मांगने से नहीं होगा, अपने आप अचानक। वो अनुभव उस तितली की तरह है, जिसके पीछे हम भागते हैं तो वो और भागती है, जब हम एक जगह स्थिर बैठ जाती है जाते हैं तो वो यहां आके बैठ जाती है। लेक्चर्स, क्लासेस, वर्ड्स, स्पीचेस, सब कुछ भरा पड़ा है, इंटरनेट, गूगल में सब कुछ है, एक्सेप्ट मैं कौन हूं। मैं कौन हूं इज अनगूगलेबल, वो स्वयं की खोज है, अपनी खोज। तो जब से आप यहां आए, सभी आंख बंद करेंगे और देखो, गेट से एंट्री कर रहे हैं तब से लेकर अब तक क्या क्या किया इस परिसर में, इस कैंपस में, इस अरावली की गोदी में। यहां देखे हुए स्थान, यहां के कमरे, यहां के लोग, उनके पोशाक, यहां के पेड़, यहां के पौधे, यहां की हवाएं, जब से आए तब से मेडिटेशन सेशंस, क्लासेस, यहां की दिनचर्या, अब मन ही मन में देखो अपनी वहां की दिनचर्या जहां से हम आए, वो घर, वहां के लोग, वो कमरा, वो ऑफिस, वो सड़कें, सुबह से लेकर वहां क्या करते हैं थे हम लोग, उस दिनचर्या को आंखों के सामने लाएंगे। क्या खाते थे, कहां घूमते थे, किससे मिलते थे, शांति, जैसे एक नए विश्व में आए हैं। अजीब सी तरंगे हैं यहां पर, एन अपलिफ्टिंग एटमॉस्फियर, हायर कॉन्शियसनेस। तो जब यहां आए हैं तो यहां से कुछ ले जाना है, कुछ ऐसा ले जाना है जो लंबा समय चले, कुछ ऐसा जो हमें बदल दे, कुछ ऐसा जो हम चाहते थे कब से पर वो मिल नहीं रहा था, वो यहां मिल जाए। तो आज के इस सत्र में हम साइलेंस के विषय में चर्चा करेंगे। मौन, इंजीनियरिंग, हाउ टू इन्वेंट, हाउ टू डिवाइस, हाउ टू एक्सपेरिमेंट, हाउ टू ऑपरेट, वो सारी बातें। साइलेंस अर्थात केवल न बोलना नहीं है, न बोलना उसका एक भाग है पर उसमें बहुत सी बातें हैं। हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में कई बार साइलेंस का एक्सपीरियंस किया है। लगभग यहाँ आने से पहले 3 या 4 बार और यहाँ आने के बाद पिछले 16 सालों में 10 और 11 बार, 11 टाइम्स। सबसे पहला साइलेंस जो आया था वो अचानक आ गया था, अद्भुत। हम 16 साल के थे, 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम पूरी की, छुट्टियां चालू हो गई। हमारे पिताजी चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, किताबें ले आए, गांधीयन थॉट्स। महाराष्ट्र में सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा एक चौथा सब्जेक्ट था गांधीयन थॉट्स, और वो ऑटोनोमस बॉडी थी। उसमें अगर एंट्री चाहिए तो आपको ये चारों सब्जेक्ट क्लियर करने होते थे। वो किताब हमारे हाथ में आई, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, वो भी कंसाइज्ड वर्शन इंग्लिश। थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, और वो पढ़ते 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 मुझे ऐसा लगा कि लेखक कहता है कि मैंने बीड़ी पी, फिर पश्चाताप किया, नॉनवेज खाया, फिर पश्चाताप किया, झूठ बोला, फिर पश्चाताप किया। मुझे लगा कि मुझे भी पश्चाताप करना चाहिए। हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, पर पढ़ते पढ़ते अब तक का जीवन एक जैसे अंधकार था और यहां से एक टर्न हो गया, और वो पढ़ते पढ़ते ही अचानक मौन हो गए। ऐसा मौन कि वो मौन 5 से 6 मास तक चला। उस 6 मास तक एक शब्द भी बोला नहीं, किसी से बात ही नहीं की। यहां तक कि पिताजी, माताजी, उनको चिंता हो गई कि ये क्या हो गया, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ये बोलता ही नहीं, एब्सोल्यूट साइलेंस। एक और किताब पढ़ी थी हमारे घर में, बहुत फटी पुरानी, लव ऑफ गॉड, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स, एसीसी की। उसमें कुछ वाक्य थे कि प्रभु प्रेम का तीर मेरे हृदय में घुसा है, एंड आई ब्लीड द अनहीलिंग वुंड ऑफ गॉड्स लव। और वहां से उस 16 साल की उम्र में हमारे जीवन की एक नई यात्रा चालू हो गई। एग्जाम का रिजल्ट आया, बहुत अच्छे मार्क्स, इसमें 95%, पीसीएम में 97 पॉइंट समथिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग कहाँ भी एडमिशंस, परंतु भीतर एक ऐसा मौन प्रकट हो गया था, जीवन के सारे प्रश्न खुलने लगे कि मैं कौन, मैं क्या, मैं कहाँ, मैं क्यों, मुझे करना क्या है। घर के लोग खुश हो रहे थे, हम साक्षी होकर देख रहे थे इनको, ये क्या है, व्हाई। दैट वॉज फर्स्ट साइलेंस जो चला था 6 मंथ्स। उसके बाद में एडमिशन हो गई, सब हो गया, एंड देन सेकेंड साइलेंस एक आया था, दैट वॉज पोस्ट MBBS 7 डेज। उसमें वापस एक अवेकनिंग हुई। फिर एक थर्ड साइलेंस आया था आफ्टर इंटर्नशिप, और वो सबसे बड़ा था और सबसे गहरा। उस पीरियड में इंटेंस स्टडी करते गए करते गए करते गए। नागपुर में बर्डी किसी ने देखा होगा तो वहाँ ढेर सारी पुरानी किताबें मिलती है नीचे 2-3 किलोमीटर। वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए गए थे, पर एक अचानक मौन आ गया, फिर तीसरा, और वो सबसे डीप वाला था, और जिसमें सबसे डीपेस्ट रियलाइजेशंस हुए। वहाँ जितनी बुक्स थी अलग अलग संस्थाओं की और अलग अलग धर्मों की, सब 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 पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, और वो पढ़ाई फिर से छूट गई मेडिकल की, क्योंकि अब गहरा प्रश्न था जीवन का। वहाँ एक मठ था, रामकृष्ण मठ, वहाँ गए। वहाँ पे ढेर सारे उपनिषद थे, फिर उनको पढ़ना चालू किया। वहाँ बहुत सारे संतों के जीवन की कहानियाँ थी, वो पढ़ी। कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद 8 वॉल्यूम्स वो 8 डेज में पूरी की, और ये करते 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 एक सबसे गहरा साइलेंस आया, और उसी साइलेंस में एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि ईश्वर कौन है और मुझे उससे मिलना है। हमें याद है एक सत्संग में बैठे थे, उसमें जो स्वामी जी थे वो कह रहे थे कि जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। सेकंड लाइन उन्होंने कही कि जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, और तीसरी लाइन कही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। अचानक से धक्का लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे तो खोज करनी है, कैसे, कहां। हमको याद है उस समय हमने एक लिस्ट बनाई थी 50 संस्थाओं की, कहां जाऊं, चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, एस्कॉन, योगा द सत्संग सोसाइटी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, जितने जितने हम जानते थे सब की एक लिस्ट, और सबसे लास्ट में रखा था ब्रह्मा कुमारी को। यहां नहीं जाना है, क्योंकि देखा एक बार गए भी थे सेंटर पर, तो देखा यहां तो सब बहने हैं, हम क्या करेंगे, हमको यहां नहीं जाना है, बाकी सब जगह जाएंगे। फिर चुनना था कहां जाना, और फिर एक दिन डिसीजन भी ले लिया फिर कि ये सब छोड़ के अभी, और तब तक MBBS का रिजल्ट आ गया, उसमें बहुत अच्छा सब था। पोस्ट ग्रेजुएशन एक एंट्रेंस एग्जाम दी थी, उसका भी रिजल्ट आ गया, कहीं एक जगह MD की सीट मिल रही थी औरंगाबाद। परंतु ये पूरा साइलेंस इतना ज़बरदस्त था कि हमने डिसाइड किया ये सब मुझे नहीं चाहिए। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, ये व्यर्थ है, जीवन का लक्ष्य ये है ही नहीं। और फिर 2 विजन दिखने लगे थे, एक पोस्ट ग्रेजुएशन करना पेशेंट और फिर उनकी सेवा करना, और दूसरा विजन था ये सब छोड़कर संन्यास लेकर भगवान को पाना, इधर या इधर, इधर या इधर, इधर या इधर। हमको याद है एक बार हम एक चर्च में गए थे, उस सिस्टर से हमने कहा था, यहाँ जो बुक्स रखी थी कुछ बुक्स ली और उनको कहा, तो उन्होंने बुक्स छीन ली And she said, you don't need this now. Probably you are going to get God soon. जैसे तुम्हें अब भगवान मिलने वाला है. और वो वैराग्य की ऐसी अवस्था थी और वो ऐसा मौन था और जो कुछ उस मौन में हुआ उसका प्रभाव अब तक चल रहा है. दैट वॉज 2002. इतना गहरा मौन और इतना डेप्थ और उसमें वो खोज और उसमें फिर विजन क्लियर हुआ कि हमें ये सब चाहिए ही नहीं मेडिकल का, हमें तो खोज करनी है भगवान की. और जब हम घर आए और घर पे बता दिया पेरेंट्स को कि हम ये संसार छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या हो गया, शॉक हो गया, भयंकर शॉक. हमें लगा था कि विस्फोट होगा, महाविस्फोट होगा, ये नहीं सोचा था. वो इतना भयंकर विस्फोट था कि हमको समझाने के लिए लगभग 150 लोग तो आए होंगे, रिश्तेदार. कितनी सारी कुंडलियां निकाली, बहुत लोग समझाने के लिए आए, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इधर ही रुक. एक तो लेटर लिखा था, 6 पेज का लेटर, टू अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माई सन हैज बीन हिप्नोटाइज्ड. बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ, पर हमें तो जाना ही था और बहुत बड़ी कहानी है. परंतु सार में कहे तो हमारी जो लौकिक बहन है उसने कहा कि तुम जाओ, फाइनल हो गया है तुम्हारा, अब मैं नहीं रुकूंगा. बहुत सारे बाधाएं आई, तुम्हारे नाम पर बैंक का लोन है, उसका क्या, 6 महीना एक जगह ऑफिस मेडिकल ऑफिसर जॉब की, 6 महीना में लोन चुक तो की और फिर तैयार हो गए संन्यास के लिए. सब कुछ हो गया, घर में रोना धोना सब चालू था, पर हमारे बहन जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी थी उसने कहा कि तुम जाओ पर माउंट आबू होते होते जाओ, यहां आओ और फिर चले जाना. तो हमने फाइनल कर लिया था चेन्नई. और बहुत सी घटनाएं हुई, बहुत छोटी छोटी, और फिर हम यहां आए एज एन अननोन, जैसे आप लोग आए हैं अभी, वैसे एक टी शर्ट और एक जीन्स. नीचे शांतिवन, शांतिवन देखा है सबने, आज जाएंगे तो वहां पहुंच गए कॉमन बुगी में बैठकर. सेंटर पर जब गए तो दीदी ने कहा था, हमारी लौकिक बहन लेके गई, ये मेरा भाई है, इसको जाना है मधुबन. तो दीदी ने हमसे पूछा भी था कब से ज्ञान में हो, तो बहन ने बताया था बोलना 1 साल, अदरवाइज नॉट अलाउड. उन्होंने पूछा कौन से सेंटर जाते हो, सेंटर हमारा था नहीं, तो हमने कहा था जहां हम रहते हैं अमरावती. उन्होंने उस दीदी को फोन लगाया कि ये आता है क्या, उन्होंने कहा नीलम तो आती है, ये भाई तो कभी नहीं आया. तो हमने कहा जहां हम मेडिकल ऑफिसर थे वहां जाते थे, वहां गए थे 1-2 बार. तो उन्होंने कहा कैसे, ठीक है जाओ, पर कैसे जाओगे, रिजर्वेशन फुल है. हमने कहा पूरा भारत घूमे हैं कॉमन बोगी में बैठकर, मुझे किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, चेन्नई, दिल्ली, सब जगह. क्योंकि प्यास इतनी तीव्र थी, इतनी तीव्र थी कि उस पीरियड में सब 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 जो जो आते गया, जो जो मिलते गया, जितनी जितनी संस्थाएं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, रमण महर्षि, सब 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 करते करते एक ऐसे स्टेज पर आ गए थे कि अब पीछे नहीं जा सकता, ये फाइनल है. और ये सब कुछ जो हो रहा था मौन में हो रहा था, ना कभी के किसी को कुछ बताया, ना किसी से कोई चर्चा की, ना कुछ, कुछ भी नहीं, चुपचाप. और फिर नीचे आ गए, और नीचे आते ही एक ऐसा अनुभव हुआ दिव्य, जिसको कहेंगे कि जिसने मुझे रोक दिया. एक ऐसा अनुभव कि जिसने ये कहा कि दिस इज द फाइनल ट्रुथ, और फिर ऊपर आए अगले दिन, एक नीचे हॉल है आप देखेंगे डायमंड हॉल, वहां पे वो अनुभव हुआ, हम कहेंगे वहां पे नवजन्म हुआ, नौ मास एक स्ट्रगल था और अचानक जैसे वो मिल गया जिसकी खोज थी, जिसके लिए सब कुछ छोड़ रहे थे वही मिल गया। या हम ये नहीं कह सकते कि हमने उसे ढूंढा, उसने मुझे ढूंढा, और ये तो यहाँ के हर व्यक्ति का ही अनुभव है। ऊपर आए माउंट आबू साइट सीइंग के लिए, जैसे आज आप जाने वाले हैं, बहनों ने बताया ये हॉस्पिटल के सामने, ये ग्लोबल हॉस्पिटल है, वो देखकर मुझे याद आया कि मैं डॉक्टर हूँ। हम अंदर गए और वहाँ पर मेडिकल ऑफिस मेडिकल डायरेक्टर थे डॉक्टर प्रताप, उनसे कहा मुझे ज्वाइन करना है अभी। उन्होंने कहा लेटर, हमने कहा कौन सा लेटर, कहाँ का लेटर, हमारा कोई सेंटर ही नहीं है, पर हमने कहा हम आएंगे। वापस घर गए, घर में सुनाया कि संन्यास कैंसिल, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। बहुत बहुत दुखी थे। हमारी माता जी ने कहा जर तू गेलास, अगर तू गया तो कुआ दिख रहा है ना उसमें कूद जाऊंगी, हमने उसको कहा था अभी अभी कूद जा जा। तो हम फिर आ गए और फिर यहां थे डेढ़ साल, और फिर यहां से फिर से एंट्रेंस एग्जाम दी थी, और फिर बाहर थे, यहां से फिर गए 2005 में और वापस 2010 में आ गए। उस बीच में अलग अलग जगह पर थे, मुंबई में थे, हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर, BACS वहाँ थे, और वो सब कुछ करके वहाँ आ गए 2010 में, 10-10-10, और तब से अब तक यहाँ है। इन 16 सालों में सबसे ज़्यादा जो हमने सीखा वो सीखा इन अरावली वादियों से, यहाँ के मौन से। एक एक दिन इतना कुछ नया 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 जो कभी नहीं जाना वो उस मौन से जाना। तो आज का जो टॉपिक है, और इस 16 सालों में जैसे हमने कहा उस समय वो 3 मौन थे, इस समय ऐसे 10 बार हुआ, 10 डेज टोटल विदाउट मोबाइल विदाउट एनीथिंग टोटल साइलेंस, और लेटेस्ट जो था वो अभी कुछ मास पहले हम एक जगह गए थे उत्तराखंड में, वहाँ 8 दिन रहे, और वो 8 दिन पूर्ण मौन में थे। और जब तक हम ऐसा नहीं करते ऐसा लगता है जैसे इस अलौकिक दिनचर्या में भी हम खो गए कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ भी कहो कितना भी कहो, शब्द कितने भी अच्छे हो, भाषण कितने भी अच्छे हो, जो परिवर्तन होता है, जो क्रांति आती है वो मौन में ही आती है, शब्द से नहीं। वर्ड्स आर सेकेंडरी। तो आज हम ऐसी 7 बातें देखेंगे। सबसे पहली है स्पीच हॉलिडे। इस साइलेंस इंजीनियरिंग में स्पीच हॉलिडे, बीच बीच में एक है मुख का मौन, एक है काया का मौन, एक है मन का मौन। काया का मौन भी बहुत स्ट्रांग है, जहां हम एक जगह बैठ जाए अधिष्ठान में और शरीर को न हिलाए, यह भी एक साधना है, यह भी एक तपस्या है। महात्मा गांधी ने एक आर्टिकल में लिखा है 6 अगस्त 1925 यंग इंडिया के वो एडिटर थे, उन्होंने उसमें लिखा है एक बार साउथ अफ्रीका में हम एक मठ में गया था, मैं ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री थी, उस मोनेस्ट्री में उस मठ में अधिकतर लोग मौन व्रत धारण किए हुए थे जो वहां रहने वाले थे। मैंने उस फादर से पूछा कि ऐसा क्यों, इस आश्रम में सब लोग मौन व्रत क्यों धारण किए हुए हैं। तो उस फादर ने एक बहुत अच्छी बात कही। फादर ने कहा कि देखो, हम जो मनुष्य हैं बहुत कमज़ोर है, हमें यह नहीं समझ आता है कि हम क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, इसीलिए, और हमारे भीतर एक बहुत सूक्ष्म आंतरिक आवाज़ है, यदि हमें उस आवाज़ को सुनना है तो ऊपर से मुख को बंद करना होगा। इसीलिए इस आश्रम का नियम है कि अधिकतर साधक मौन व्रत धारण कर लेते हैं। जैसे मोबाइल दूर रहे तो बेचैनी होती है, डिटॉक्स होता है, वैसे ही टोटल साइलेंस में रहने के बाद हमने ये देखा है तीसरे चौथे दिन एक डिटॉक्स की प्रोसेस चालू हो जाती है, बोलने की चाहती कुछ तो बोलूं, पर वो टेम्पररी होती है, वो चली जाती है। थर्ड और फोर्थ डे के बाद देन हम आत्मा में धीरे धीरे उतरने लगते हैं। और यहाँ सबकी व्यस्त दिनचर्या होगी तो हो, जरूरी नहीं है कि सबको इतना समय मिले, परंतु इंटरमिटेंट साइलेंस तो कर ही सकते हैं। इंटरमिटेंट साइलेंस अर्थात एटलीस्ट 8 o'clock तक किसी से बात नहीं करनी, चुप, या मोबाइल से थोड़ा दूर, या फिर शाम के समय जैसे 8 PM या 9 PM डिजिटल कर्फ्यू, कीप अवे। एक व्यक्ति था, वो नाव से जा रहा था और नाव उचट गई, और वो नाव कि अधिकतर लोग जो बैठे थे वो डूब कर मर गए, वो अकेला बच गया, एक सुनसान टापू पर पहुंच गया। वहां पर वो रहने लगा, पहला दिन, दूसरा दिन, लोगों को ढूंढा, उसने कोई नहीं था उस टापू पर, एब्सोल्युटली सुनसान वो टापू था। फिर धीरे धीरे वो देखता रहा, कोई नाव तो नहीं आती है इधर से उधर से, कोई नाव नहीं आई। फिर वहीं रहने लगा, फल खाने लगा, झोपड़ी एक बना ली। एक हफ्ता, दो हफ्ता, 6 months बीत गया, 1 year बीत गया, 5 years बीत गया, वो अकेला उस टापू पर, कोई भी नहीं आया वहां पर। और फिर अचानक एक दिन उसे एक नाव आती दिखी, वो गया नाव के पास, वो लोग आए नाव से और उन्होंने कहा कि हमें पता था कोई तो है इस टापू पर, इसलिए हम आए हैं तुम्हें ले जाने के लिए, चलो वापस। उसने कहा, एक मिनट, क्या तुम्हारी नाव में कुछ अखबार है? अखबार, न्यूज़पेपर, उस दुनिया के जहां से तुम आए हो। वो कहते ये है, वो अखबार पढ़ता है और उनको वापस देता है, कहता है मुझे नहीं आना है उस दुनिया में। अब इस 5 years में मैंने जो शांति का अनुभव किया, जिस मौन का अनुभव किया, वो मुझे उस 50 years में नहीं हुआ। वहां जो शोर है वो एक पागलपन सा है, यहां पे मैं 5 years से रह रहा हूं, अभी मुझे बिल्कुल भी आने की इच्छा नहीं है। पर ऐसा नहीं हो सकता है कि हम में से भी कोई नाव में बैठे हैं और तूफान आए और नाव उलट जाए और फिर हमें भी कोई टापू मिल जाए और फिर हम उसमें 5 years रहे और फिर ये अनुभव हो, ये आवश्यक नहीं है। वो एक सुनसान टापू हमारे ही भीतर है, वो भीतर एक टापू है और वहां चले जाना है बीच बीच में अंदर, जो हमने कहा इंटरमिटेंट साइलेंस। अगर छुट्टी का दिन है तो वो अगर हो सके तो टोटल साइलेंस। लोग क्या करते हैं बड़े शहरों में साइलेंस के दिन, छुट्टी के दिन क्या करते हैं, रिलैक्सेशन के लिए, साइलेंस के लिए कहाँ जाते हैं, बीच पर जाते हैं, जाते हैं ना बीच पर। पर उस छुट्टी के दिन सारा शहर वहां आता है, सो दैट्स द पैराडॉक्स। तो साइलेंस कहाँ होगा? साइलेंस एक टेक्निक नहीं है या कोई ये नहीं है, इट शुड बिकम द पार्ट ऑफ लाइफ, या फिर वो एक जीने की एक कला है, वो हमारे जीवन में अपने आप अंदर चली जाए। जब जब यहां पे भी कितने ग्रुप्स आते हैं और जाते हैं, हम देखते हैं सबको सब अनुभव नहीं होते, किसी किसी को हो जाते हैं, और जो अनुभव होते हैं वो हो सकता है शायद किसी क्लास में भी ना हो, वो मौन में होते हैं, चुपचाप। तो सबसे पहली बात, स्पीच हॉलिडे, क्या करना है, हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे जाती है, स्पीच से। हमें ऐसा लगता है जितना ज्यादा हम बोलेंगे, जितना जोरदार हम बोलेंगे, जितना अच्छा बोलेंगे, उतना हम सबको प्रभावित कर सकेंगे। बट सबसे बड़ा स्पीच कौन सा है? साइलेंस, अनुभव। इसके लिए डू नॉट बिलीव कि कोई कह रहा है या किसी किताब में लिखा है, आप करके देख लो। एक दिन टोटल मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो और जस्ट बी विथ योरसेल्फ, फिर क्या होता है। आई शैल स्पीक टू थी इन साइलेंस, शेक्सपियर का एक पात्र कहता है, मैं तुमसे बात करूंगा परंतु मौन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जितना गहरा मौन उतनी गहरी अनुभूति। अनुभव इतना सस्ता नहीं है कि वो मीडिया पर मिले। अनुभव के लिए क्या चाहिए? साधना, एनी एक्सपीरियंस। यहाँ तक कि जो फिल्म के लोग होते हैं, एक AR रहमान का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि जब मुझे कोई नई धुन बनानी होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी दूसरे देश में चले जाता हूँ जहाँ का टाइम जोन अलग है, सब कुछ अलग है। एक फिर ये सब भूल जाता हूँ कि ये सॉन्ग रिलीज होगा और ये लोगों को अच्छा लगेगा, और ये सब धीरे धीरे हटा देता हूँ। धीरे 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 आई एंटर इनटू द इनर स्पेस, एक डीप साइलेंस की स्टेज में, वहां वो धुन टच होती है। माइकल जैक्सन ने अपना एक एक्सपीरियंस लिखा था, व्हेन आई डांस अ स्टेज कम्स व्हेन डांसर एंड डांस बिकम वन। ये दोनों एक हो जाते हैं, मौन, चुप, अननोटिस्ड। और जो भी डीप एक्सपीरियंस होते हैं स्पिरिचुअलिटी के, वो सब कहाँ होते हैं? अननोटिस्ड, बिल्कुल चुपचाप। यहाँ अभी आप लोग बैठे हैं, हो सकता है हमने जितनी बातें अभी कही और कहने वाले हैं वो कुछ भी आपको याद ना रहे, या आप तक जो भी सुना, परंतु कुछ एक ऐसा शब्द किसी का जो अंदर चला जाए। यहीं पर ज्ञान सरोवर में ऐसे ही एक ग्रुप आया था, और उसमें एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर थे शायद, तो वो म्यूजियम में गए और म्यूजियम में घूम रहे थे, तो वो एक भोली भाली एक अनपढ़ माता थी वहां पर, उसने उनको देखा और फिर पूछा क्या समझ में आया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ठीक है सब। तो उन्होंने उसको ऐसे ऐसे देखा और कहा कि इतने बड़े ऑफिसर होके भगवान को ने ये भी तुमको समझ नहीं आता। वो जो किस भाषण में सुने थे उसने कॉन्फ्रेंस में सब भूल गया। उसको वो उस माता का वो एक वर्ड याद आया जो एकदम ही हर्ट कर गया अंदर। और यहाँ से जाने के बाद फिर उन्होंने कोर्स और वो सब किया और फिर बाद में अनुभव में सुनाया। जो अनुभव से निकलते शब्द है उसमें क्या होती है? पावर होती है। हम पिछले इतने सालों से यहाँ हैं, एक दिन मिलता है संडे, वो पूरा संडे हमारा अधिकतर मौन में या तो पहाड़ों पर जाता है। हमारे पास एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं मुरली, उसका अध्ययन। दूसरा है आय, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मुखता, खुद को देखना, दूसरों को नहीं, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये करता है, वो करता है, मैं क्या करता हूं, मुझे क्या करना है। और ये सारे प्रोसेस उस साइलेंस और सॉलिट्यूड में होती है। हम बाकी सबको देखते रहते दिन भर, परंतु मैं क्या कर रहा हूं, वेयर आई स्टैंड, ये हम नहीं देख पाते। तो आपको ये बहुत सुनहरा अवसर मिला है, यहां बैठ के वहां की जो दिनचर्या पूरी देखो, यहां बैठ के वहां क्या हो रहा है वो पूरा देखो, और क्या ठीक किया जा सकता है। दूर से हम किसी चीज को जब देखते हैं तो अच्छे से दिखाई देती है, पैनोरामिक व्यू, पूरी लाइफ को देख लेना, क्या चल रहा है ये पूरे जीवन भर। तो ये कार्य करना है, उसके लिए क्या चाहिए? इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन दो शब्द है, हिंदी में कहते हैं सिंहावलोकन। जो शेर होता है ना, ऐसे पीछे मुड़ के देखता है ना, सिंहावलोकन, पीछे मुड़ के देखना कि मैं कहाँ जा रहा हूं, मुझे क्या करना है, ये करूं कि वो करूं। शेक्सपियर का जो हैमलेट है ना, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू मी में रह जाता है, ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि वो करूं, वो करूं कि वो करूं। हमारा एक फ्रेंड था, अभी भी है, उसको पहले MBBS के बाद सीधा पोस्ट ग्रेजुएशन में उसको DM मिल गया, KM में था, पर इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया DM कार्डियोलॉजी में, इतने पेशेंट, एक एक दिन में 300-300 पेशेंट छोड़ दिया बीच में, वापस एंट्रेंस एग्जाम दी, फिर उसको MS ऑर्थो मिला। ऑर्थो मिलने के बाद उसे पता चला ये तो पूरा मैकेनिकल काम है, इसमें दिमाग का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, उसको भी छोड़ दिया। उसने कहा ये सब मेरे से नहीं होता। फिर उसको बाद में MD स्किन लिया उसने, MD स्किन में उसने करते करते उसे लगा ये क्या जीवन है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है इसमें, ये भी छोड़ दिया। अभी अपने गांव में है लीडिंग प्रैक्टिशनर MBBS। शायद वो गलत जगह था, एकांत में उसने सोचा तो उसे ये मिला। एक बहुत बड़े सर्जन थे, बहुत बड़े कार्डियक सर्जन, बहुत सारी सर्जरीज की, और अभी उनका कॉलेज का लास्ट डे था, फेयरवेल स्पीच था, और वो रोने लगे। लोगों ने समझाया कोई नहीं, ठीक है, आपने इतनी सेवाएं की, समाज की सेवा की, हॉस्पिटल की, सब की, इतने सर्जरीज की, एक्सलेंट सर्जन, और ऐसा नहीं कि आप रिटायर हो गए तो आप यहाँ नहीं आओगे, आप आते रहना। उन्होंने कहा मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूँ, मुझे सर्जन बनना ही नहीं था, मुझे म्यूजिशियन बनना था। याद आ रहा है। इतना भाग रहे कि कहाँ जा रहे वही भूल गए और क्यों जा रहे। इसलिए थोड़ा साइलेंस स्टॉप आवश्यक है कि हम रुके, मुझे करना क्या है और मैं किस ओर जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। स्टॉप, पॉज, ब्रीथ। तो सेकंड है इंट्रोस्पेक्शन। तीसरा है लव। लव एक एनर्जी है, उसमें द रियल लव जो होता है ना, वो साइलेंस वाला लव होता है। खलील गिब्रान की एक कविता है जिसमें वो प्रेमी ठक ठक करता है, प्रेमिका अंदर है, वो पूछती है कौन, वो कहता है मैं हूं तुम्हारा प्रेमी, वो कहती है जाओ यहां से, अभी तुम्हारा प्रेम पूरा नहीं है। वो जाता है, वापस आता है एक साल बाद, फिर से ठक ठक करता है, वो कहती है कौन, वो कहता है मैं हूं, आगे कुछ नहीं कहता। वो कहती है अभी तुम्हारा प्रेम अधूरा है, जाओ। वो फिर आता है, ठक ठक, कौन, कोई आवाज नहीं, अब आओ। जहां प्रेम है वहां पर मैं खो जाता है, वहां दो नहीं रहते, एक हो जाता है, और उस एक में, उस मौन में ही वास्तविक प्रेम है। जहां बहुत शब्द है, बहुत वादे इरादे, ये सब ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वहां कहीं ना कहीं उथलापन है। द रियल लव इज साइलेंस एंड साइलेंस इज लव। जब हम प्रेम से भर जाते हैं तो अपने आप एक मौन अवतरित होता है, ये सब सब हमारे हैं, फिर वो जो अलग अलग है वो नहीं दिखाई देता। सो वे टू साइलेंस इज लव एंड वे टू लव इज साइलेंस, दोनों ही जुड़े हुए हैं। तो यहां से जाने के बाद हो सके तो एक दिन हफ्ते का ऐसा रखना है जिसमें हम अधिकतर मौन में रहे, अपने साथ रहे, और हो सके तो कुछ भी नहीं करो, कोई बुक नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, जस्ट बी विथ योरसेल्फ। जैसे हमने कहा, हमने 10 बार ये अभ्यास किया है इन 16 सालों में, पहला मौन 2012 या 13 में, 10 डेज टोटल मौन, यहां थे नहीं, कहीं और जाके, कुछ भी नहीं, ना बुक, ना पेन, ना पेंसिल, कुछ नहीं। ये भी एक बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस है। तीसरे चौथे दिन कुछ पकड़ में आता है अपने विषय में। पहले दिन तो डिटॉक्स में, बेचैनी में जाता है, दूसरा दिन बेचैनी, तीसरा दिन भी बेचैनी, कुछ करूं? आपने देखा होगा ना, ट्रेन में लोग सफर करते तो कैसे बेचैन होते, चैन खोलते बंद करते, फिर इसको बात करते, अच्छा और सुनाओ कहाँ जा रहे हो, फिर वो खिड़की से देखते हैं, फिर इसको देखते हैं, फिर उसके बात करते हैं, फिर अपना वो बिस्तर ठीक करते हैं। सो मच रेस्टलेसनेस, अंदर इतनी बेचैनी है कि कुछ तो करना ही है। आनंद ने बुद्ध से पूछा था, मैं आपके साथ पिछले 40 साल से रह रहा हूं, आप जिस करवट पे सोते हो उसी करवट पे उठते हो, कमाल है। आप रात में भी जागते ही रहते हो क्या, नींद में भी? हम तो सोते किधर है और उठते किधर है, गोल गोल घूम जाते हैं। बुद्ध ने कहा, करवटे वो लेते हैं जो बेचैन है। मेरा मन शांत हो गया है, वो स्थिरता, वो एकांत, वो मौन। अगला है एनर्जी कल्टीवेशन। एक बहुत सुंदर टॉपिक है एनर्जी कल्टीवेशन, इस पर वर्कशॉप्स होते हैं विदेश में। एनर्जी कल्टीवेशन, एनर्जी को कैसे कल्टीवेट करें, सारा अध्यात्म का सार एक ही है, एनर्जी प्रिजर्वेशन। हमें अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना है, जमा करनी है उसको, एनर्जी को। कितनी ऊर्जा चली जाती है, कोई बात होती है उसके विषय में सोचते रहते हैं, कोई बात पास्ट में हुई थी उसके विषय में अब तक सोच रहे हैं, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वैसा किया, ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसी में ही संघर्ष जीवन भर। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर चीज सिखाई जाती है कि ये संसार एक नाटक है, हम सब एक्टर्स है, ये उसका पार्ट, ये मेरा पार्ट, ये उसका रोल, ये मेरा रोल, और उसको रोल ही ऐसा दिया हुआ है जैसे कोई राम कथा, राम ये होती है ना, क्या कहते हैं, रामलीला, रामलीला में एक राम जी है, रावण है, सीता है, हनुमान है, लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा है कि रावण इतना जोर जोर से हंसता है, और थोड़ी देर के बाद राम लक्ष्मण सीता पीछे बैठ के चाय पी रहे हैं, पी रहे हैं ना, क्योंकि ये नाटक है, ये रोल है। उसी तरह ये जो संसार है, ये एक बहुत बड़ा नाटक है, इसका इस समय ये रोल है। रिजेक्शंस होते हैं, बट रिजेक्शंस आर रीडायरेक्शंस। आज सुबह ही हम लोगों की क्लास होती है डेली, एक बता रहे थे, एक स्क्रिप्ट राइटर था, वो फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखता था, युवक बहुत अच्छी लिखता था, पर हर जगह रिजेक्शन, हर जगह रिजेक्शन, पर इस बार उसने पूरा जी जान लगा दिया और एक स्क्रिप्ट लिखी। फोन आया उस डायरेक्टर का, उसने कहा, नो आई डोंट थिंक योर स्क्रिप्ट इज़ वेरी गुड, इट इज़ नॉट यूनिक, लोगों को नहीं पसंद आएगी ये। उसने बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं नहीं नहीं, पर उसने फ़ोन रख दिया डायरेक्टर ने। अब उसको इतनी निराशा होगी, इतनी निराशा होगी, उसने कहा बस हो गया, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे अपने जीवन को ख़त्म करना है। दुकान पर गया, एक रस्सी ली, रस्सी खरीद के कमरे में आया हैंग करने के लिए, सुसाइड करने के लिए। फिर थोड़ा सा विचार आया, थोड़ा बाहर जाऊं एक बार, एक चक्कर लगा के आता हूं, गली में बाहर आया तो दो तीन बच्चे खेल रहे थे, और उसने जो रस्सी ली थी ना, वैसी वाली रस्सी से सेम कलर की रस्सी से, उसमें दो बच्चे रस्सी ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, और बीच का जो बच्चा है वो कूद रहा था, और उसका हाथ पैरालाइज था। उसने उस दृश्य को देखा और एकदम से कुछ हो गया, प्रेरणा आ गई, रिजेक्शन हो गया था पर वो अब रीडायरेक्शन बन गया। तो ये संसार एक नाटक है, एक ड्रामा है, इसमें हर चैलेंज से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जितनी बार हम फेल हुए, उस फेलियर ने हमें कुछ सिखाया है। यहाँ जितने लोग हैं वो सब हमारे गुरु है। हमारी संस्था में बहुत बड़े एक बहुत महान हस्ती हुई थी, निर्वेर भाई साहब। उन्होंने एक बार कहा था कि पांडव भवन में, पांडव भवन हेडक्वार्टर से आज जब देखेंगे, 1970s में लगभग 300 लोग थे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा था, मैं ऐसे सोचता था कि ये 300 लोग मेरे गुरु हैं, हर एक से मुझे सीखना है। 300 people are my guru. Kitna achha vichar hai ye. I learn from everything, from everyone. Even a small child can teach me. Ek learning mindset. Sabse seekhna hai. यहाँ जितने लोग आपको बैठ के सुना रहे, हर एक के पीछे एक बहुत बड़ा अनुभव है जीवन का. तो यहाँ पर जब तक है तब तक एक स्टूडेंट बनकर सीखो सीखो सीखो. अ स्टूडेंट लाइफ. तो एनर्जी कल्टीवेट करनी है. हमारी एनर्जी कहाँ लीकेज होती है उसका एक लिस्ट बनानी है. एनर्जी लीकेज, एनर्जी ड्रेनर्स एंड टाइम वेस्टर्स. और सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट आज के युग में जो हो रहा है वो किस में हो रहा है? शॉर्ट्स एंड रील्स. एक फिनोमिनन है जिसको कहते हैं डोपामिन डंपिंग एंड डोपामिन लोडिंग. डोपामिन डंपिंग अर्थात एकदम स्पाइक चला जाता है ऊपर. डोपामिन खुशी का हार्मोन है. डोपामिन डंपिंग अर्थात कुछ देखा बहुत शॉर्ट एकदम ऊपर चला गया. और फिर जब हम कुछ दूसरे काम करते हैं जैसे ऑफिस का काम, कुछ पढ़ना, वो फिर मजा नहीं आता है उसमें, क्योंकि वो हैप्पीनेस उसमें नहीं रहती है. इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के डू नॉट सी ऑल ऑफ दिस रील्स एंड वीडियोस. उसमें फिर एकदम डंपिंग हो जाता है. स्टार्ट विद डोपामिन लोडिंग, एक्सरसाइज, वॉकिंग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीजें. देन अगर वो करना भी है कुछ तो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, इवनिंग और समथिंग, जहां एक्साइटमेंट है वहां पे एनर्जी बहुत ऊपर जाती है. और फिर उसके बाद में फिर होता है खालीपन, एक अकेलापन, एक बेचैनी, एम्प्टीनेस और दुख. डोपामिन जो है ना वो एक ऐसा हार्मोन है जो वादे बहुत करता है पर पूरे नहीं करता. वो कहता है इसमें बहुत सुख मिलेगा. सेंशुअल फैंटेसीज, युवक सोचते रहते मैं ये करूं वो करूं, पर जब करता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है. दैट इज द डिसेप्शन. तो एनर्जी को कल्टीवेट करना है धीरे धीरे. नेक्स्ट इज नेचर. सबसे ज्यादा पावरफुल है और जहां से जो ऊर्जा आती है वो है नेचर. सबको पसंद है ना नेचर? पर नेचर अगर पसंद है तो उसके साथ कुछ समय बिताना पड़ेगा. जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हो सकता है वहां पर नेचर का सानिध्य ही ना प्राप्त हो, परंतु टाइम निकालना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा. ढूंढो तो मिलेगा. सर्च एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल ओपन. कुछ ऐसी जगह मिल जाए रोज जहां हम जाए और बैठे, प्रकृति, नदी, पहाड़िया, पर्वत. ट्री हगिंग किस किसने किया है? ट्री हगिंग बहुत लोग करते हैं, झाड़ को गले लगाना. बेयर फुट वॉक होता है, नंगे जमीन, नंगे पाव जमीन पर चलना. फ्री रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन, बहुत अच्छी नींद आती है. जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है. सूखी जमीन पर, घास पर नहीं, एंड घास ऑल्सो एब्जॉर्ब्स एनर्जी. बेयर फुट वॉक कहते हैं इसके. उसके बाद एक दूसरा है सन गेजिंग. ये दो ऐसी चीजें हैं व्यक्तिगत हमारे जीवन की, अगर ये दो चीजें हम नहीं करें तो बेचे खालीपन लगता है. कि दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ नाउ. सुबह सुबह उठते हुए सूरज को देखना और उसकी ऊर्जा लेना, वो प्राणिक ऊर्जा, वो जैसे ही भरती है अपने आप भूख और वो सब बहुत ज्यादा नहीं रहती, हाई लेवल ऑफ एनर्जी रहती है 3-4 आवर्स. इसलिए बहुत ज्यादा नींद की आवश्यकता नहीं लगती है, उसमें फुल रहता है बैटरी चार्ज्ड. तो प्रकृति का सानिध्य, और प्रकृति कैसी है? मौन है, और मौन मौन की तरफ ले जाता है. इसलिए जाओ बैठो, कुछ लिखो, कुछ करो. अगला है क्रिएटिव टास्क, कुछ क्रिएटिव काम करने हैं, और वो कैसे हो? सोलो. और सबसे बेस्ट क्रिएटिव टास्क है राइटिंग. राइटिंग, लिखना. कितनों को पसंद है लिखना? तो लिखना एक मेडिटेशन बन जाए. एक एक शब्द जो हम लिख रहे हैं, टी लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, आई के ऊपर का बिंदु कहां लग रहा है, जे का ऊपर का बिंदु कहां लग रहा है, एवरीथिंग टेल्स अबाउट अवर पर्सनैलिटी. आपका वाई जो है वो वाई का लूप कैसा है, जी का लूप कैसा है, चाहे हिंदी या हिंदी, जो भी इंग्लिश वो एक एक अक्षर जो हम लिखते हैं वो मेडिटेशन बन जाए। ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग इज मेडिटेशन। बैठ के लिखो एक एक शब्द, और पोएम कुछ भी, सोलो वर्क है, जैसे रनिंग, रनिंग जो है ना, इट्स मेडिटेशन। जो भी मैराथन रनर्स है उनका ये एक्सपीरियंस है कि दौड़ते दौड़ते ऐसी स्टेज आती है कि व्यक्ति अशरीरी हो जाता है, बॉडीलेस, उसको पता ही नहीं चलता ये अपने आप दौड़ रहा है। पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग, गार्डनिंग, ये सब मौन में किए जा सकते हैं, अकेले किए जा सकते हैं, सोलो एक्टिविटीज, क्रिएटिव वर्क्स। और लास्ट में है ईटिंग, ईटिंग इन साइलेंस या ड्रिंकिंग इन साइलेंस। 24 घंटे में एक बार का जो फूड है वो विदाउट मोबाइल और विदाउट स्पीकिंग करना है। 3 बार खाते हैं ना या 4 बार जो भी है, उसमें से एटलीस्ट 1 meal विदाउट फोन एंड विदाउट स्पीकिंग, इफ नॉट ऑल 3, जस्ट 1। वहां से प्रैक्टिस चालू करनी है। टोटल फोकस व्हेन यू आर ईटिंग, जस्ट ईट स्लोली स्लोली। इस पर किताबें लिखी गई है, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ड्रिंकिंग। तो अपने आप जो प्लेट है ना वो, उसकी साइज अपने आप जितनी कम होगी और चम्मच जितना कम होगा उतना अच्छा। यू ईट माइंडफुली, स्लोली स्लोली, सो दैट ईटिंग बिकम्स मेडिटेशन, ड्रिंकिंग बिकम्स मेडिटेशन, वॉकिंग बिकम्स मेडिटेशन, राइटिंग बिकम्स मेडिटेशन, सिंगिंग, डांसिंग, सब मेडिटेशन बन जाए। तो ये साइलेंस की 7 बातें थी। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बताया एज फॉर स्पीच हॉलिडे, बीच बीच में संकल्प ले लेना है सुबह सुबह आज मुझे मौन रहना है कुछ समय, कुछ घंटों के लिए। और मौन अर्थात केवल यही नहीं कि बात ही नहीं कर रहे, एक मौन वो भी है जिसमें हम बातें कर रहे फिर भी अंदर से मौन है, केंद्र मौन है, दैट इज ऑल्सो साइलेंस, मौन अर्थात स्वचिंतन। अगला आय इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन अर्थात खुद को देखना, झांकना। एल अर्थात लव, लव जो है ना वो एक एनर्जी है, उसको हमें क्रिएट करनी है, और वो सबसे ज्यादा क्रिएट होगी प्रकृति के सानिध्य में। ई अर्थात एनर्जी कल्टीवेशन, देखना है मेरी एनर्जी कहाँ जाती है, किससे बहस करने में, आर्गुमेंट करने में, डिबेट करने में, अननेसेसरी डिजायर्स में। अगला नेचर, नेचर व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। कवि कहता है कि कैसा जीवन है हमारा, नेचर से हम इतने दूर चले गए हैं। जितना हम प्रकृति प्रेमी बनेंगे, निसर्ग प्रेमी बनेंगे, हर चीज में हमें कुछ ना कुछ दिखाई देगा, हवाओं में, नदियों में, सब में जीवन दिखाई देगा, और अपने आप हमारा सब कुछ बदलते जाएगा। अगला क्रिएटिविटी, क्रिएटिव वर्क्स, कुछ क्रिएटिव वर्क करना है, कैलीग्राफी इज अ क्रिएटिव वर्क, राइटिंग क्रिएटिव वर्क, पेंटिंग क्रिएटिव वर्क, स्केचिंग क्रिएटिव वर्क, मेमोरी ट्रेनिंग क्रिएटिव वर्क, टीचिंग क्रिएटिव वर्क, दूसरों को सिखाना वो भी एक क्रिएटिव वर्क है, आर्ट है वो, कुछ तो लर्न करते रहना है। एक 99 एज की माता, उसके बीच में वीडियो आया था केरला की, शी इज टेकन एडमिशन इन KG1 KG1 पढ़ाई नहीं की थी ना, तो अभी पता चला पढ़ना चाहिए, तो एडमिशन ली, पढ़ रही है। और लास्ट बताया ईटिंग, जो भी खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो कैसे करें, एक मौन की अवस्था में। हम अभी अभी जैसे कहा उत्तराखंड में एक कुछ दिन थे, 8 दिन टोटल साइलेंस में। उन 8 दिनों में अपने आप उस प्रकृति के सानिध्य में पहाड़ों के बीच बहुत सी रचनाएं की थी, उसमें से एक ये रचना थी। अचानक वहां पे एक पैर में कांटा चुभ गया था और इतना दर्द हो रहा था, तो ऐसे लगा कि अभी क्या करूं, और एकदम एक विचार आया कि ना रोना नहीं है, सहमना नहीं है। और ऐसा ही एक अनुभव इससे पहले भी हुआ था। हम लोग हॉस्पिटल की तरफ से उत्तराखंड गए थे 2013 में, जब त्रासदी हुई थी, तो हमारा उंगली जो है वो कार का जो दरवाजा है ना वहां रह गया, और वो बहन ने दरवाजा बंद कर दिया कार के वहां पे उंगली और बंद कर दिया, आवाज ही बंद हो गई। मतलब दर्द से पार क्या हो रहा था वही, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला ये क्या हो रहा है, परंतु मुझे लगा ये मुझे सहना है, देखता हूं क्या होता है। सुन ओ राही, थकना मना है, मार्ग कठिन है, रुकना मना है, चलते रहना तेरी यात्रा में विश्राम मना है। आंधी चले तो डरना मना है, तूफान उठे तो भी झुकना मना है, धूप जले तब डगमगाना मना है, कांटे चुभे तो सहमना मना है, संकट की तपिश में पिघलना मना है, आशा के फूलों को मुरझाना मना है, हवाएं कहे ठहरना मना है, धरती कहे भटकना मना है, बादल कहे बिखरना मना है, सूरज पुकारे अब बुझना मना है, चलते रहना तेरी राह में आराम मना है, समय के प्रवाह में बहकना मना है, संसार के जाल में रमना मना है, दुनियावी उत्सवों को मनाना मना है, यथार्थ को भूल जाना मना है, मायावी सुखों में चिपकना मना है, झूठे इंद्रजाल में फंसना मना है, तू है ज्वाला मिटना मना है, तू है हवा थमना मना है, तू है लहर पलटना मना है, तू है दिशा मुड़ना मना है, चलते रहना तेरे पथ में विराम मना है, कलियुगी काई में फिसलना मना है, मोह की डाली में लिपटना मना है, वायदे से मुकर जाना मना है, भगवान की नजर से छिपना मना है, देह के दर्पण में खोना मना है, अहंकार की सीढ़ी पर चढ़ना मना है, सुन ओ राही सिहरना मना है, जीवन है संग्राम कांपना मना है, चलते रहना तेरे मार्ग में ठहरना मना है, इस वनवाह में सवरना मना है, शोक वाटिका में सजना मना है, अर्श के से फर्श पर उतरना मना है, समान के तख्त से गिरना मना है, राही है तू किसी नगर में बसना मना है, चल एकला चलो रे साथी बनाना मना है, तू तो शिव संगी खुदा दोस्त बना है, माटी के रिश्तों में उलझना मना है, रूठना मना है अब रोना मना है, आंसू नहीं अब अग्नियस्त्र बन बरसना है, सुन ओ राही थकना मना है, मार्ग कठिन है रुकना मना है, चलते रहना तेरे जीवन में अवकाश मना है। ओम शांति। सभी स्थिर होके बैठेंगे, सभी स्थिर होके बैठेंगे और एक बार अपने पूरे जीवन को साक्षी होकर देखेंगे। जीवन में जो कठिनाई आई, मुसीबतें आई, मुझे थकना नहीं है, मुझे हार माननी नहीं है, आगे बढ़ते जाना। गीत बजेगा, उस गीत में खो जाएंगे।
थकना मना है, मार्ग कठिन है, रुकना मना है, चलते रहना तेरी यात्रा में विश्राम मना है, आंधी चले तो डरना मना है, तूफान उठे तो भी झुकना मना है, धूप जले तब डगमगाना मना है, कांटे चुभे तो सहमना मना है, संकट की तपिश में पिघलना मना है, आशा के फूलों को मुरझाना मना है, हवाएं कहे ठहरना मना है, धरती कहे भटकना मना है, बादल कहे बिखरना मना है, सूरज पुकारे अब बुझना मना है। चलते रहना तेरी राह में, आराम मना है। समय के प्रवाह में बहकना मना है, संसार के जाल में रमना मना है। दुनियावी उत्सवों को मनाना मना है, यथार्थ को भूले जाना मना है। मायावी सुखों में चिपकना मना है, झूठे इंद्रजाल में फंसना मना है। तू है ज्वाला मिटना मना है, तू है हवा थमना मना है, तू है लहर पलटना मना है, तू है दिशा मुड़ना मना है। चलते रहना तेरे पथ में, विराम मना है। कलयुग काई में फिसलना मना है, मोह की डालियों में लिपटना मना है। वायदे से मुकर जाना मना है, भगवान की नजर से छिपना मना है। देह के दर्पण में खोना मना है, अहंकार की सीढ़ी पर चढ़ना मना है। ओ राही सिहरना मना है, जीवन है संग्राम कांपना मना है। चलते रहना तेरे मार्ग में, ठहराओ मना है। इस वनवाह में संवरना मना है, शोक वाटिका में सजना मना है। अर्श से फर्श पर उतरना मना है, स्वमान के तख्त से गिरना मना है। राही है बरसना है। सुन ओ राही थकना मना है, मार्ग कठिन है रुकना मना है। चलते